अगली सुबह आहान की आँख खुली तो चाहत उसके पास में नहीं सोई हुई थी, वो बाथरूम में थी। चाहत को अपने पास न देखकर आहान को बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल में किया। चाहत के बाहर आने का इंतज़ार करने तक आहान ने अपना मोबाइल चेक किया तो उसने किसी का मैसेज आया हुआ था। उसे देखने के बाद आहान के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया और कहा, मुझे मेल कर दो, मैं प्रिंट निकाल लूँगा। इतना कहने के बाद आहान ने कॉल कट कर दिया। उसने बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखकर धीरे से कहा, मैं तुम्हें इस तरह ज़बरदस्ती अपनी शर्तों पर पास में नहीं रख सकता डॉल, तो मुझे थोड़ा बहुत तुम्हारा भी सोचना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिसके बाद तुम्हें मेरी बातें मानने में कोई दिक्कत ना हो और ना ही मेरे करीब आने पर तुम्हारा चेहरा उतरे। चाहत की फीलिंग्स आहान से छुपी हुई नहीं थीं, वो अपने ख्यालों में खोया था। तभी चाहत बाहर आई, उसने बाथरूम पहना हुआ था। चाहत के गीले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। आहान बेड से उठा तो चाहत को लगा वो उसके करीब आ रहा है। उसने अपनी नज़रें झुका ली, लेकिन आहान उसके पास आने के बजाय बाहर चला गया। आहान के कुछ न कहने पर चाहत के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। कहीं ये नाराज़ तो नहीं हो गए? क्या ज़रूरत थी चाहत उनसे पहले उठकर तैयार होने की? तुझे तो कोई काम भी नहीं है, फिर वेट नहीं कर सकती थी क्या उनके जागने का? चाहत ने मासूमियत से कहा। चाहत तेज़ी से वार्डरोब के पास गई और अपने लिए कपड़े निकाले। वो जल्दी से चेंज करने के बाद आहान के पीछे गई। आहान उसी के पास आ रहा था और उसके हाथ में एक पेपर था। जल्दबाजी में चाहत आहान से टकरा गई। चाहत का सिर आहान के सीने से टकराने पर उसे हल्की सी चोट लग गई। आहान उसके माथे को सहलाकर बोला, आखिर किस बात की जल्दबाजी है तुम्हें डॉल? कहाँ जा रही थी इस तरह दौड़कर? आप ही के पास आ रही थी, वो आप मुझसे बात के बिना बाहर क्यों चले गए? मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ हो, आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा ना आहान? चाहत ने झट से पूछा। डॉल, माना कि मुझे एक्सेसिव एंगर इशू है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं 24/7 गुस्से में ही रहता हूँ। तुम पर मुझे गुस्सा नहीं आता है, और थोड़ा सब्र कर लिया करो। मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया, आहान ने जवाब दिया। फिर उसने उसे पेपर को चाहत के हाथ में रख दिया। चाहत ने जल्दी से उसे पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट के भाव थे। वो झट से आहान के गले लग गई और खुश होकर बोली, थैंक यू सो मच आहान, मेरा सपना पूरा करने के लिए। मुझे लगा आपने इस बात को इग्नोर कर दिया है। मेरी डॉल कुछ चाहती है और मैं उसे बात को इग्नोर कर दूं? ऐसा नहीं हो सकता, आहान ने चाहत को सहलाते हुए कहा। उसके अपने आप इस तरह हक करने पर आहान को अच्छा महसूस हो रहा था। चाहत फिर आहान से अलग हुई। अचानक ही उसके चेहरे की एक्साइटमेंट उदासी में बदल गई और वो आहान से बोली, नो डाउट आहान, इंपीरियल यूनिवर्सिटी मुंबई की बेस्ट यूनिवर्सिटी है और यहाँ आसानी से एडमिशन नहीं मिलता है। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, उसके लिए मैं जितना थैंक यू बोलूँ वो कम है, पर मैं श्रद्धा के बिना वहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैं फिर से अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी ही जा रही हूँ। अच्छा, और तुम्हें क्या लगा था डॉल मैं तुम्हें अकेले इस यूनिवर्सिटी में भेज दूंगा? डोंट वरी, मैंने श्रद्धा का एडमिशन भी यहाँ पर करवा दिया है। इस बारे में मेरी उससे बात हो गई थी और मैंने उसे फॉर्म तक भेज दिया है। उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही आहान ने बताया, चाहत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। निशा के जाने के बाद आहान ने पहली बार उसके चेहरे पर जेन्युइन स्माइल देखी थी। वहीं चाहत को भी अच्छा लग रहा था कि आहान उसके बारे में सोच रहा है, वरना कल रात उसने सभी सर्वेंट को बुलाकर जबरदस्ती आहान को रिस्पेक्ट करने का कहा था। उसके बाद चाहत को एक पल के लिए लगने लगा कि आहान सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है। चाहत वहां खड़ी आहान का चेहरा देखते हुए सोच रही थी। तभी आहान ने उसके सामने चुटकी बजाकर कहा, देखो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम बस मुझे ही देखती रहो, पर काम भी जरूरी है। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, उससे पहले तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा और आते टाइम पिक कर लूंगा। मेरे बिना तुम ना तो यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगी और ना ही बाहर निकलोगी। चलो जाकर चेंज कर लो, आई विल ड्रॉप यू। चाहत ने आहान की बात पर हामी भरी और अंदर गई। पिछली बार उसने जल्दबाजी में सिंपल सा ड्रेस पहना था, इस बार उसने अपने लिए कॉलेज के हिसाब से सी ग्रीन कलर का कोऑर्ड सेट पहना था। चाहत कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही थी। वो अच्छे से तैयार हुई और नीचे पहुंची। आहान आयुष के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर था। आयुष ने जब चाहत को खुश और इतना तैयार हुआ देखा तो उसे भी अच्छा लग रहा था। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है भाभी? आयुष ने उसे टीज करते हुए पूछा। आयुष के मुंह से चाहत के लिए भाभी सुनकर आहान और चाहत दोनों ही उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे, तो आयुष अपनी बात कवर करने के लिए जल्दी से बोला, अब क्या करूं, आप दोनों को साथ देखने की आदत हो गई है तो भैया भाभी वाली ही फीलिंग आती है। मुझे इस तरह देखने के बजाय आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते ताकि मैं ऑफिशियली भाभी बोल सकूँ? अभी नहीं आयुष, चाहत अभी छोटी है और अपने कॉलेज फिर से ज्वाइन करना चाहती हैं। जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी और वो शादी के लिए तैयार होगी तभी शादी करेंगे। बाकी डोंट वरी, तुम्हारी भाभी यही बनेगी, आहान ने सख्त आवाज में जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छा है चाहत, फिर तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, आयुष बोला। चाहत ने उसकी बात पर हामी भरी। थोड़ी ही देर में उनका ब्रेकफास्ट हो गया था, जिसके बाद आहान चाहत को लेकर इंपीरियल यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा था। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गए। आहान और चाहत वहां पर पहुंचे तो श्रद्धा उन्हें अपनी स्कूटी के साथ वहां दरवाजे पर मिली। आहान गाड़ी से बाहर नहीं निकला था, वो नहीं चाहता था कि कोई उसे गलती से भी पहचाने, इसलिए उसने श्रद्धा को अंदर बैठने का इशारा किया। जैसे ही श्रद्धा गाड़ी के अंदर बैठी, आहान ने उसकी तरफ देखकर कहा, स्टडी के अलावा तुम दोनों का ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें यहाँ पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका अच्छे से फायदा उठाना। चाहत और श्रद्धा ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर हाथ पर बाय बोलकर चली गई। उन दोनों के जाते ही आहान ने पीसी को कॉल पर कनेक्ट करके कहा, जब तक वो यूनिवर्सिटी में है नजर रखना, कोई भी लड़का उसके आसपास जाने की कोशिश करे तो मुझे उसी वक्त बताओगे। इतना कहने के बाद आहान ने कॉल कट कर दिया। उसने चाहत को पढ़ने के लिए जरूर भेजा था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा चाहत पर रहने वाली थी। एक नज़र यूनिवर्सिटी को देखने के बाद आहान वहां से चला गया। वहीं श्रद्धा और चाहत यूनिवर्सिटी में थी। वो पहली बार इंपीरियल यूनिवर्सिटी आई थी, अब तक उन्होंने उसका नाम ही सुना था। वहां आते ही श्रद्धा ने एक्साइटेड होकर कहा, वैसे मिस्टर ओबेरॉय हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही एहसान कर रहे हैं। तुम्हारा एडमिशन करवाने तक तो ठीक था, उन्होंने मेरा एडमिशन भी करवा दिया। वैसे तुम्हें बता दूं, जॉब लगने के बाद मैं उन्हें पैसे लौटा दूंगी। मैं भी यही सोच रही हूं कि जब फिर से स्टेबल हो जाऊंगी तो आहान के सारे पैसे चुका दूंगी, उसने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं, चाहत ने जवाब दिया। श्रद्धा ने कुछ देर के लिए कुछ नहीं कहा, फिर वो कुछ सोचते हुए से बोली, अच्छा चाहत, बुरा मत मानना, क्या मैं जान सकती हूँ आहान तुम्हारे ऊपर इतने एहसान क्यों कर रहा है? कोई भी लड़का, लड़का छोड़ो, कोई भी इंसान किसी के ऊपर इस तरह मेहरबान नहीं होता, खासकर पैसों के मामले में। आहान ने पहले निशांती का इलाज करवाया तो अब तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले रखी है। तुम उसके घर पर रहती हो, उसने हम दोनों का एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया, इसका कारण क्या है?
श्रद्धा के मन में कहीं ना कहीं शक पैदा हो रहा था। वो ये बात आहान के सामने ना कह दे, इसलिए बात को संभालते हुए चाहत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आहान एक साफ दिल के इंसान है, और तुम ये मत सोचो कि मैं उनके घर पर अकेली रह रही हूँ, उनका भाई भी हमारे साथ रहता है और मॉम भी कुछ दिनों में आने वाली हैं। एक्चुअली जब मम्मा की डेथ हुई थी तब आहान की मॉम का एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में है, मैं उनसे मिलने भी गई थी, और आहान मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, मैंने उनसे एक तरह का लोन लिया है। मजबूरी में चाहत को झूठ बोलना पड़ रहा था, हालांकि ऐसा करने पर उसे दिल की दिल में काफी बुरा महसूस हो रहा था। और बदले में तुम उन्हें क्या दोगी? क्या तुम उसकी असिस्टेंट हो? पहले तुमने निशा आंटी के सामने यही कहा था कि तुम उनकी असिस्टेंट हो, क्या अब तुम ये काम करती नहीं करने वाली हो? श्रद्धा ने पूछा। उसकी इतने सारे सवाल चाहत को परेशानी में डाल रहे थे, वो बात को टालते हुए बोली, अफकोर्स मैं उनके लिए काम करूंगी, अब क्या बातें करके ही सारा टाइम वेस्ट करना है? याद है ना, आहान ने कहा था सिर्फ स्टडी में फोकस करना है, और तुम मुझे जानती हो कि मेरा तो पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मुझे आहान को डिसअपॉइंट नहीं करना है, तो सारी क्लास लेने वाली हूँ, चलो मेरे साथ। बोलते हुए चाहत ने श्रद्धा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचते हुए अंदर ले जाने लगी। चाहत और श्रद्धा अपनी क्लास में पहुंच चुकी थी। चाहत का स्टडी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, फिर भी वो अपनी तरफ से फोकस करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं आहान को चाहत की हर मूवमेंट की न्यूज़ मिल रही थी, इसलिए वो भी बेफिक्र होकर काम कर रहा था। आहान अपने काम में बिजी था, तभी उसके पास आयुष का कॉल आया और उसने कॉल पर कहा, भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और ट्रस्ट मी, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगा, प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए। लेकिन आयुष, आहान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आयुष ने कॉल कट कर दिया। उसके ऐसा करने पर आहान को गुस्सा आने लगा, वो चिढ़कर बोला, हद है इस लड़के की, कभी भी पूरी बात नहीं बताता, पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी है इसने, मेरी लाइफ ठीक से चल क्यों नहीं सकती, डॉल को सेट किया तो अब ये अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ गया। आहान ने जल्दी से अपना सारा काम छोड़ा और गाड़ी लेकर आयुष की भेजी हुई लोकेशन के लिए निकल चुका था। आयुष के ठीक से कुछ न बताने पर उसे गुस्सा आ रहा था, उसने आयुष को कॉल भी किया लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। अब तो आहान को वहां चलकर ही पता चल सकता था कि आयुष ने आखिर क्या गड़बड़ की है।